अनुभाग एक, ऐसे कमरे होते हैं आदरणीय पाठिका आदरणीय पाठक जो अपने नाम से आगे होते हैं और साथ ही उसे प्रकट भी कर देते हैं। उन्हें संगीत कक्ष कहा जाता है और अपेक्षा की जाती है कि उनमें सुर बसते हो, कि कुछ कंपन करे, कि हवा लकड़ी तार और मनुष्य एक ऐसी व्यवस्था में जुड़े जो मात्र उपयोगिता से ऊंची हो। और फिर ऐसा होता है कि ऐसे ही किसी संगीत कक्ष में जिसकी मंच पर एक फ्लूगल रखा हो, मानो वह कोई वादा ढो रहा हो, जिसकी खिड़कियां ऐसे परिदृश्य का दृश्य खोलती हो जो इतना शांत करे मानो उसे किसी हाथ ने विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र के लिए रचा हो, संगीत नहीं बल्कि वाणी सुनाई देती है। वह एक शाम थी जो अब सर्दी नहीं थी और अभी गर्मी भी नहीं थी, एक शाम जिसमें बाहर का हरापन भारी पर्दों के पीछे पहले ही वह प्रसन्न निर्लज्जता धारण किए हुए था, जो पहाड़ों में हमेशा किसी झूठ की तरह लगती है, मानो दुनिया हल्की हो, मानो वह निष्कलुष हो। लॉन करीने से सजा खड़ा था, पेड़ अपनी शाखाएं ऐसे थामे हुए थे मानो वे अपनी उपस्थिति से परिचित हो, और कहीं खिड़की से बहुत परे एक मनुष्य वाक्य चिन्ह जितना छोटा एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था जो कैलेंडर में दर्ज नहीं था। अंदर मगर घर की व्यवस्था थी, लकड़ी का फर्श जो गर्माहट देता था जबकि वह था नहीं, लाल स्तंभ जो अपने सुनहरे आधारों और शीर्षों के साथ अत्यधिक बड़े मोमबत्ती के ठूठों जैसे लगते थे, मानो कमरे ने वाल्पुर्गीस नाइट को वास्तुकला के रूप में अपनी स्मृति में संजो रखा हो। आर्मचेयर और कुर्सियां जो कतारों में नहीं बल्कि द्वीपों में बातचीत की भूदृश्यों में छोटी बुर्जुआ किलों में बदल गई थी। बीच में एक लंबी मेज थी जिस पर पानी की बोतलें, गिलास, कुछ मोमबत्तियां और हर उस व्याख्यान का आधुनिक प्रतीक जो अब उपदेश नहीं होना चाहता, दो माइक्रोफोन रखे गए थे, छोटे काले, इतने गोपनीय कि वे ठीक इसी तरह अपनी शक्ति प्रकट कर रहे थे। हांस कैस्टॉप ने स्थान ग्रहण किया। उसने यह उस आधी झिझकती आधी आज्ञाकारी हरकत के साथ किया जो उसने बर्गहोफ में सीखी थी और जो जब से वह यहां था फिर से उसके शरीर में लौट आई थी, मानो वह मांसपेशीय स्मृति हो। शरीर आदरणीय पाठिका आदरणीय पाठक इसमें भरोसेमंद होता है, वह बहुत कुछ भूल जाता है पर अपनी पुरानी व्यवस्थाएं आसानी से नहीं भूलता। हांस ने वह अंगूठी उंगली में पहन रखी थी जो डॉक्टर पॉर्शे ने उसे दी थी, यह चिकना धात्विक वलय जो ऐसा दिखावा करता था मानो वह आभूषण हो और सच में कुछ और नहीं था सिवा एक जासूस के, एक छोटा वफादार निर्मम प्रोटोकॉल लेखक। वह उसे महसूस नहीं कर रहा था,
मौजूद था।
हांस के बगल में और लोग बैठे थे, एक जोड़ा जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए था, मानो ऐसे कमरों में जो इतने आराम की गंध से भरे हों मनुष्य को एक दूसरे को साबित करना पड़े कि वे वास्तव में साथ हैं। एक औरत जिसका चेहरा कुछ तना हुआ था, मानो वह केवल शब्दों पर नहीं बल्कि संभावित निर्णयों पर भी कान लगाए हो। एक आदमी जो शाम शुरू होने से पहले ही बैठने की मुद्रा बदल रहा था, मानो बैठना किसी तरह की नैतिक परीक्षा हो। और एक और आदमी जिसे एक रात जो कन्फेटी की गंध से भरी थी कभी विग और गधे के मुखौटे के साथ देखा गया था, उस क्षण में जब दुनिया खुद का पैरोडी कर रही थी, अब वह सजा धजा बिना मुखौटे बिना विग के बैठा था और फिर भी ऐसी नजर के साथ जो प्रकट करती थी कि वह गधे से छुटकारा नहीं पा सका था बल्कि उसे अपने भीतर ऐसे ढो रहा था जैसे कोई स्मृति जिसे अब और निभाना नहीं चाहता। उसका नाम मॉर्गनस्टर्न था, कम से कम यही वह नाम था जो अब लिया जा रहा था, और नाम उपयुक्त था। वह नवीनता, शुरुआत, अपने आप को नया नाम देने के प्रयास जैसा सुनाई देता था, बिना यह दावा किए कि अतीत कभी अस्तित्व में ही नहीं था। हांस ने उसे बदन से देखा बस क्षण भर के लिए और बिना सच में चाहे उस अजीब सच्चाई के बारे में सोचा कि मनुष्य कभी कभी अपनी नैतिकता नहीं बदलते बल्कि केवल अपना पदनाम।